Ladies and gentlemen, good day and welcome to Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited Q4 and FY 2026 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Pankaj Manjani, Company Secretary and Compliance Officer, for his opening remarks. Thank you, and over to you, sir.
Good afternoon, everyone, and we welcome all the participants to Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited's Q4 and FY 2026 earnings call. Joining us today from the management side, we have Mr. Puneet Makharia, Chairman and Managing Director, Mr. Deepak Beriwala, Chief Financial Officer. Now I'll hand over the call to Mr. Puneet Makharia for his opening remarks. Over to you, sir.
Thank you, Pankaj. A very good afternoon to everyone, and welcome to Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited Q4 and FY 2026 earnings call. I hope you had an opportunity to review our financial results and earnings presentation, which are available on the stock exchange and the company's website also. Joining me today from management team is Mr. Deepak Beriwala, our CFO. As we close financial year 2026, I'm pleased to share that Shree Pushkar has delivered a strong and balanced performance reflecting steady growth, effective options, and progress on key expansion initiatives, both our chemical as well as fertilizer business. Highlighting the business results of our operational focus on strategic initiatives over the year, I would like to walk you through the key financial and operational outcomes as follows. For the full year, revenue from operations reached at 976.60 crores, representing a 21.1% increase compared to FY 2025. Growth was supported by higher volumes in the chemical segment and improved realization in the fertilizer segment. Over the full year, the chemical segment grew by 25.2%, while the fertilizer segment grew by 16.5%, demonstrating the effectiveness of our operational executions and portfolio strategies. On the profitability front, EBITDA for the year stood at 99.5 crores with a margin of 10.2%, while PAT comes 71.1%, translating to a 7.1% margins. The improvement in the profitability has also translated into strong return ratios. The return on equity increased to 12.2% and return on capital employed rising to 15.3%, reflecting on company's disciplined approach to the capital deployment. During FY 2026, the company has reported revenue from operations of 218.2 crores. The performance in the quarter was affected by ongoing supply chain disruptions and impacted raw material availability. EBITDA stood at 22.1 crores, reflecting a margin of 10.1%, while PAT was 12.9% with a margin of 5.8%. During the year, the company continued to invest in expansion and integration initiatives across both segments aimed at enhancing production capacity, strengthening our operational efficiencies, and supporting long-term growth. The company has a total planned expenses of 512 crores as of March 31, 2026, and 189 crores has been incurred on the ongoing projects and manufacturing facilities. It is funded through a combination of internal accruals and preferential allotment. These investments reflect the company's commitment to scaling its operations on a disciplined and strategically aligned approach. As of these initiatives, the company has made a steady progress on its ongoing expansion projects in both chemical and fertilizer segments. While the commission of Ratnagiri Unit 5 and 6 experienced some delays due to external factors, all preparatory work and project milestone remain on the track. Contemplating these operational developments and our focus on sustainability, I am pleased to share that during FY 2026, the company has commissioned 1.1 MW DC solar power plant at Haryana Hisar, bringing total installed capacity of solar to 10.6 MW DC and enhancing our renewable energy capabilities. Along with this side, the previous announcement of 10 MW solar plant at Nanded, Maharashtra, remains on track, which will ultimately take solar capacity to 20.6 MW DC, further emphasizing the company's commitment to renewable energy and sustainable operations. In summary, FY 2026 has been a year of steady growth and focused execution for Shree Pushkar. The company has strengthened its operational performance, advanced key expansion initiatives, and continued to invest in sustainability, all while maintaining disciplined financial management. Looking ahead, we remain committed to delivering values for our stakeholders by leveraging our expanding capacities, optimizing of the operation across both the segments, and further enhancing our renewable energy initiatives. We are confident that these efforts will position our company for continued growth in the coming years. I will now hand over the call to Mr. Deepak Beriwala, our Chief Financial Officer, to take you through the detailed financial and operational performance for Q4 and FY 2026. Over to you, Deepak.
Thank you, sir. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us today. I will now take you through the detailed financial and operational performance of the company for the quarter and full year ended 31st March 2026. In Q4 2026, the company reported revenue from operation of rupees 218 crore, reflecting a steady performance. Our gross profit during the quarter was rupees 83.7 crore with a margin of 38.4%. EBITDA for the quarter was rupees 22.1 crore with a margin of 10.1%, while PAT was rupees 12.9 crore with a margin of 5.8%. In the chemical segment, the company reported sales of 13,725 metric ton, reflecting a 36% year-on-year increase, generating revenue from operation of rupees 126.4 crore. The fertilizer segment recorded sales of 50,500 metric tons, contributed to 91.8 crore in the revenue from the quarter. Overall consolidated volume for Q4 FY 2026 reached at 64,239 metric tons. The quarter performance was affected by ongoing supply chain challenges, which impacted the availability of the raw materials. For the full financial year, the company reported revenue from operation of rupees 976 crore, reflecting a 21% growth over FY 2025. Gross profit for the year was rupees 331.5 crore, up by 11.7% with the margin of 33.9%. EBITDA stood at 99.5 crore, representing an 18.7% growth with a margin of 10.2%, while PAT increased 19.6% year-on-year to 70 crore, translating to margin of 7.1%. The year's growth was supported by higher volumes in the chemical segment and improved realizations in the fertilizer segment. The chemical segment recorded sales of 72,423 metric tons, up by 27.9%, generating revenue of rupees 531.8 crore. The fertilizer segment achieved sales of 252,777 metric tons, contributing rupees 444.8 crore in the revenue. Overall consolidated volume for FY 2026 reached 325,000 metric tons, reflecting a growth of 2.5%. This performance also contributed to improved returns ratio, with the return on equity rising to 12.2% and return on capital employed increasing to 15.3%, reflecting the company's disciplined approach to capital deployment and financial management. The company continued to maintain a strong financial position, undeterred by internal accruals and preferential allotment as of 31st March 2026. Non-linked deposit amounting to rupees 140.68 crore, ensuring adequate liquidity to support ongoing and planned expansion initiatives. The company leverage remains minimal, with the net debt to equity ratio of -0.1x and a net debt to EBITDA ratio of -0.05x, reflecting disciplined financial management and conservative capital structure. In conclusion, the company continues to maintain a disciplined financial position, underlined by internal accruals and prudent capital management. With the strong liquidity and minimum leverage, the company is well positioned to support ongoing and planned CapEx expansion initiatives, coupled with the sustained profitability and strengthened return ratio. This positive positions the company to effectively pursue the strategic growth and deliver long-term value to the stockholders, shareholders. With that, I will now open the floor for questions. Thank you.
Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin with the question. We will now begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask questions may please press star and one on their touchtone phone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use only handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. You may please press star and one to ask questions. The first question is from the line of Harshit Khadka from RoboCapital. Please go ahead.
Yes, thank you for the opportunity. Am I audible?
Yes, sir. Please proceed.
Yes. Sir, my first question is regarding the CapEx. I understand that we have some 320 odd crores of CapEx that we will incur, and mostly it will be from internal accruals only, and we are not going to take any major debt. So, sir, can you please, explain the math behind it? How exactly are we going to fund it?
See, Harshit, if I take you bit before, we completed one CapEx of 174 crores in the year of 2024. That CapEx was 175 crores. That CapEx was including the takeover of the Madhya Bharat from NCLT, as well as building of a Unit 5. That CapEx was entirely funded by this our internal sources. Second line of CapEx was of 155 crores. And that entire CapEx of 155 crores is an additional facility of building up a dice unit in Unit 5. That was around 37 crores. Then building up a solar project of 35 crores. And another CapEx of Unit 6 of around 110 crores or so. Deepak, since I am away from you, I do not have the exact data in front of me. Sir, I would request you to please correct me. I would request you to please correct me if I spell out any wrong data. Just intervene and correct me immediately.
So Unit 685
crores. Okay, Unit 685 crores. So this total CapEx is of around 155 crores. For this 155 crores, Harshit, we have taken this term loan from HDFC for our solar unit of 25 crores. So the balance of 130 crores we are doing from our internal accruals. Out of that, we have done a majority of the capex that is also mentioned into our PPT as well as in the balance sheet also, in the financial results also. Those figures are not, right now in front of me because, Harshit, this con-call I am attending from my plant. Though my office, my CFO, my compliance office are sitting in the registered office, but I am away from them at the plant. So please forgive me because I do not have the exact data in front of me, right? So accordingly, I have requested Deepak to correct, if I say anything wrong. Now, thirdly, CapEx, what we are planning is of 350 crores. That is of an additional facility built up at Madhya Bharat Phosphorus Limited at Meghnagar site. That 350 crores of the CapEx, what we are planning initially, that, as of now, company holds around 140 crores of the, this initial investments into the AAA rated bonds. And we believe that in plus, this 30 crores of the preferential allotment to the promoter, this makes around 170 crores. Now, the balance left out with us is around, that is 180 crores. We are proposing, though we are not finalized, either to use our 2 years' revenue for this capex, or either we go for some part term loan in order to keep some cash in the company. So that part we have not yet decided. At the max, if we go for some term loan also, we will be going, maybe 25 or 30% of the term loan of the this capex side, and balance will be funded by the company itself from its internal accruals. I hope I'm able to address your question.
Yes, sir, very clearly. Thank you. And my second question is regarding that we were expecting a Unit 5 and 6 to come live in March, but there were obviously some delays regarding the electricity issue. Sir, what kind of outlook do we have for FY 2027 and 2028 regarding top line and EBITDA?
Ashish, honestly, if I share with you, that electricity issue has been resolved. That issue was resolved in the March first week of 2026 or around second week of March  2026. Unfortunately, due to this ongoing situation in the world, there is acute shortage and acute instability in the pricing of the certain key raw materials like ammonia, like sulfur. You got my point?
Yes.
Because of these two major issues, we have bit delayed our plant, though the plant is almost ready. If we wish, we can start the commencement of the trial production within less than in a month. Still, there are certain hiccups into the raw material sourcing, the perfect pricing of the raw material sourcing. We are still exploring the situation, Harshit. We have not yet decided how and when we are going to start the trial production. We are expecting some kind of a resolution or maybe some global supply chain restoring and some decent pricing availability of the raw materials. To give you a short idea, the prices of the ammonia and sulfur, which are the key raw materials in this segment, is almost three times. To give you a proper more figures, ammonia used to be 40-42 rupees a kg, now it is 100+. Sulfur used to be 30 rupees a kg, now 100 rupees a kg. The whole raw material chemistry and the pricing structure has gone haywire. We are still holding and waiting and looking and deeply thinking when and how we should do. We haven't come to a closure on that, but to give you more clarity on the matter, we believe that this kharif season, we will not be performing as expected before and during our con call of Q3. At that time, we were expecting something else, but suddenly, on 28th of February, the day we saw that these issues are going up and suddenly the prices have gone haywire, we are still exploring that how and when we can come into the commercial production as well as into the trial production. To give you more clarity, practically this kharif season, we do not expect any revenues from our Unit 6 as well as new expansion of Unit 5. You will see in our financials, we have not done even a capitalization of Unit 6 and Unit 5 also. We are still looking for a better opportunity and better right time to start it. For your thing, I think, being we are losing this season of kharif in FY 2026-2027, as earlier the visibility what was given by me was that somewhere we'll be able to touch a business of around 1,500 crores in the financial year 2026-2027. In my opinion, I think being we are losing the first season of the kharif, we should be closing somewhere around 1,250 or maybe 1,300 crores rupees or so. This is my visibility, what I can see and what I can share with you at presently.
Okay, sir. That was very helpful. Thank you.
Thank you.
Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management will be able to address questions from all the participants in the conference, kindly limit your questions to only two per participant. Should you have a follow-up question, please rejoin the queue. We'll take the next question from the line of Preet Nagarsheth from Wealth Finvisor. Please go ahead.
Yes. Good afternoon.
Good afternoon, Preet.
Sunil ji, fantastic performance given the huge uncertainty.
Pushkar
continues to manage such global uncertainty so well. Great management and kudos to you.
Thank you, Preet.
Sir, Sunil ji, could you please explain a little bit on what's happening? Ye jo aap bol rahe ki ammonia, sulfur, the rates have gone up, wo baat to sahi hai. Aapke liye kya ho raha hai? Are you producing less? Are your production units running low? What are you doing on the ground to manage these things? If you could just explain to us.
देखिए प्रीत जी, बहुत एक मेरे बॉटम ऑफ हार्ट से मैं आपसे शेयर करूं, ये जो परिस्थितियां अभी चल रही है, ठीक है सर, जहां तक मेरे को बहुत लिमिटेड समझ है, लिमिटेड विजिबिलिटी है, अप टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, देर इज नो वन हु कैन प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट। और सर ये जो वॉर की सिचुएशन है, दिस इज इम्पैक्टिंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अक्रॉस द ग्लोब। अब सर इस परिस्थिति के अंदर कुछ भी समझ पाना, रीड कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा मैं मानता हूं सर। और ऐसी परिस्थिति के अंदर कभी कभी सर बहुत एक शांति से बैठना, कामली बैठना और वेट एंड वॉच करके सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना या सही रास्ते का इंतजार करना बहुत जरूरी है। आई बिलीव इन वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट समटाइम्स वन रॉन्ग डिसीजन मे कीप यू आउट ऑफ द बिजनेस फॉर एवर। टू अवॉइड एनी सच काइंड ऑफ ए टेकिंग रॉन्ग डिसीजन, यू नो समटाइम्स आई बिलीव कि भाई थोड़े दो कदम पीछे हट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा कोई बहुत साहसिक कदम मत उठाओ जिससे कि भविष्य में आने के बाद में कोई भी बड़ी तकलीफ का आपको सामना करना पड़े। अब सर वर्स्ट केस सिनेरियो में समझो हमने ये खरीफ का सीजन चाहे अनचाहे अपनी मर्जी से या परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये खरीफ का सीजन छोड़ने का फैसला कर लिया कि भाई ये खरीफ के सीजन में इतनी एक उथल पुथल मत मचाओ। सर आज की तारीख में रॉ मटेरियल के दाम 3 गुना हो गए और ये 3 गुना होने के बावजूद भी सामने फिनिश प्रोडक्ट के अंदर उतनी जो अवेलेबिलिटी बोल लो या एक्सेप्टेबिलिटी बोल दो वो नहीं है। सरकार ने जो 1 अप्रैल को जो नया NBS सब्सिडी भी जो प्राइस बढ़ाई है, ठीक है सर, थैंक्स टू द गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड द इंडस्ट्री, बट ऑनेस्टली इट इज नॉट अप टू द रिक्वायर्ड लेवल, स्टिल देर इज ए 10% कैप पुट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन टू दैट। अब जितनी सब्सिडी बढ़ाई है उतनी सब्सिडी जो आज के प्राइस इंक्रीज को सपोर्ट नहीं करती, सपोर्ट इज रिक्वायर्ड मच मोर। सर लुकिंग एट माय पर्सनल, देर इज गोइंग टू बी अ टाइट सप्लाई इनटू द फर्टिलाइजर एज वेल एज इनटू द रॉ मटेरियल्स। आज की तारीख में सर जो फार्मर है वो आज के रॉ मटेरियल के दामों के ऊपर फर्टिलाइजर एक्सेप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये एक वाटर टेस्ट टाइम है, वो आगे समझ में आएगा। ये तो सर मैंने आपको अपडेट दिया हमारे यूनिट 6 के ऊपर। अब सर हम आ जाते हैं हमारे जो एग्जिस्टिंग SSP बिजनेस है उसके ऊपर, अपडेट के ऊपर। सर उसके अपडेट में जैसे हम लोगों को ये थोड़ा समझ में आ रहा था, तो व्हाट वी डिड इज दैट इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च वी प्रैक्टिकली स्टॉप्ड अवर सेल्स। वी डेलिबरेटली इंटेंशनली हम लोगों ने सेल बंद कर दी थी। ये बंद करने के बाद भी हम 9,976 करोड़ की रेवेन्यू पे आए। अगर सर ये हम 15 दिन और सेल चालू रखते तो शायद हम 1,000 के ऊपर आ जाते, और यही विजिबिलिटी मैंने मेरे Q3 Q2 के रिजल्ट्स में भी, जो एक मेरी सोच थी, मैंने 1,000 करोड़ की टॉपलाइन एक एक्सपेक्ट करी थी और हम 1,000 करोड़ में इमीडिएटली क्रॉस कर जाते हैं या बहुत इजीली क्रॉस कर जाते हैं। मेरे को नहीं लगता कि उसके अंदर कोई बड़ी बात थी। ये जो 24 करोड़ रुपए के जो रिवेन्यू कम भी है 1,000 करोड़ के मुकाबले में, ये हम लोगों ने सेकंड वीक ऑफ मार्च के अंदर हमारे डिस्पैचेस कम्प्लीटली बंद कर दिए थे, नोइंगली दैट द प्राइसेज ऑफ रॉ मटेरियल आर गोइंग हेवाई। सर जिस हिसाब से सल्फर बढ़ रहा है आप बिलीव नहीं करोगे, 1 मई से लेकर आज 19 मई हो गई है, बराबर है, 20% सल्फर अभी तक इसी महीने में बढ़ चुका है। 20 रुपया किलो तो सल्फर इसी महीने में बढ़ चुका है। तो सर सिंपल चीज है कि आज अगर मैं मार्च में माल नहीं बेचूंगा तो मेरे को अप्रैल मई जून के अंदर वो 2 पैसे ज्यादा देके जाएगा। फॉर मी द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक मनी फॉर माई इन्वेस्टर्स। इट वॉज बेटर कि मैंने मार्च में सेल नहीं करी, अब मैं उसको अप्रैल मई में सेल करूंगा। और सर जहां तक ये फ्यूचर प्राइसिंग विजुअलाइजेशन का इश्यू है, सर मुझे नहीं लगता कि किसी के हाथ में भी है। जब तक ये जो एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स एक नॉर्मल सी पे नहीं आएगी, बराबर है, तब तक ये हिकअप्स हम झेलते रहेंगे, ये थपेड़े हम खाते रहेंगे, ये रोज की ये जो मगजमारियां है ये चलती रहेगी। अब इन सब चक्करों में होता क्या है सर कि डिमांड सप्रेसेस, तो ये सर पूरा एक बैलेंस करना पड़ता है। It is not always ki bhai growth, 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 profit, profit. Theek hai, that is the bottom line. We do all understand. But sometimes you have to take a decision as per the prevailing conditions also. So accordingly, up to our best of our wisdom, we decided to go a bit slow.
Right. Sir, what is the current utilization of your plants?
Sir, current utilization of the plant is, in my opinion, would be the similar range as it has been in the earlier quarters. Though
Achha,
I am not having
60,
the exact...
50.
Pardon?
So, 60% ka jo aapka ek average utilization...
Mere khayal se 65-70% hona chahiye. Mere saamne figure nahi hai. Deepak, can you...
Yes, sir. Yes, 65-70.
हाँ बराबर मेरे ख्याल से इतना होना चाहिए सर 50-55 तक में तो हम नहीं चल सकते.
अच्छा सो इसका मतलब सर ये होता है कि आपके जो नए दो यूनिट है यूनिट 5 यूनिट 6 वो तो चलो उसको आप खरीफ के बाद ही देखेंगे बट गिवन फॉर द टू क्वार्टर्स क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 वी विल कंटिन्यू टू सी यूटिलाइजेशन द वे वी सॉ देम लास्ट ईयर फॉर दीज यूनिट्स.
इतना रहेगा सर उतना रहने वाला है सर उसमें कोई कुछ वो चीज नहीं है इसके अंदर. और ये तो आप समझ लो कि भाई जो यूनिट 6 और यूनिट 5 है उसमें हमारे ब्याज बट्टे की कॉस्ट नहीं है.
राइट
हमारे पे कोई डेट का प्रेशर नहीं है डेट का बर्डन नहीं है हमारे पे तो एटलीस्ट वी आर एबल टू सस्टेन.
राइट सर बराबर सर ओके ठीक है सर. सो मैं मोटा मोटा यही समझ रहा हूँ कि क्वार्टर 1 क्वार्टर 2
सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर इज अ लॉन्ग क्यू हु आर वेटिंग.
श्योर श्योर मैम आई विल कम बैक टू द क्यू.
श्योर सर थैंक यू सो मच. We'll take the next question from the line of Saket Kapoor from Kapoor Company. Please go ahead.
Yeah. Namaskar, Puneet ji.
Namaskar, Saket ji. Bataiye.
Sir, jo earlier participant jo keh rahe the ki aapne sir ye abhi ka current environment humko clear kar diya. To first two quarters ke liye to at least jo hamari generalized jo trend hai market ki uske hisab se hi hamare revenue and all rahenge. आप जो बता रहे थे सर कि मार्च के मिडिल से जो हमने अपने इन्वेंट्रीज को हेल्ड करके रखा है या उसका मैंने सेल्स को हमने टेपर किया है उसका बेनिफिट सर आगे जाते हुए हम क्या फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी वो बुक कर चुके होंगे.
Q1 26-27 में आना चाहिए सर वो.
ओके सर तो सर उसकी उसको कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं मैंने इन टर्म्स ऑफ क्या बेनिफिट है वो एब्सोल्यूट सेंस में कि आप जो जो अब रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि वन ऑफ ही होगा वो तो बार
सर ऐसा है वो जो सर वो जो पास्ट क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस है उससे बेहतर आएगा बराबर है क्योंकि अगर आप मेरे से एग्जैक्टली नंबर के ऊपर आप मेरे से कोई विजिबिलिटी लेना चाहोगे सर वी आर इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस करंट फाइनेंशियल ईयर मैं उसके ऊपर आपको कोई सही नंबरों की विजिबिलिटी तो नहीं दे पाऊंगा बट हाँ उससे बेटर आना चाहिए सर मैं ये समझता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा इम्पैक्ट आना चाहिए बिकॉज क्या है कि सर जो रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो काफी बदलाव आए हैं एंड वी हैव होल्डेड बैक अवर इन्वेंट्रीज फॉर द Q4 25-26 दैट वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन इन दिस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर तो उसका इम्पैक्ट आना स्वाभाविक है सर. एक बात मैं आपको ये भी बता दूं सर कि जब भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी डिमांड के ऊपर प्रेशर आता है बट यस वी आर एबल टू मूव अवर गुड्स इन द मार्केट एट अवर दिस अवर डिजायर्ड प्राइसेस. सो इन माय ओपिनियन बीइंग इन वी आर इन टू द फर्स्ट दिस मिडल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर तो कोई उसको आज क्वांटिफाई करना मेरे लिए मुश्किल है तो बट आई बिलीव इन माय ओपिनियन दिस वुड बी बेटर देन द लास्ट क्वार्टर्स.
और सर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आगे जाके जो जो, जो स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस है या जो रेगुलर बिजनेस का ट्रेंड है वो डेफिनेटली थोड़ा हर्डल हम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आपने एकदम क्लियरली कहा कि हायर प्राइसेस से एक्सेप्टेबिलिटी प्लस आपकी इन्वेंट्री जो पाइपलाइन एंड ऑल में रहती है वो भी फिर ड्राई डाउन होना शुरू कर जाएगी तो ये पूरा एक इकोसिस्टम में चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो
नॉर्मल के लिए नहीं होते. सर मैं उसको एक अलग रूप में देखता हूँ कि मैं इसको कोई हर्डल के रूप में नहीं लेता रादर मैं उसको एक ब्लेसिंग्स के रूप में लेता हूँ ब्लेसिंग्स के रूप में और एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसके लिए लेता हूँ दैट वी आर ब्लेस्ड कि भाई ये जितने भी हमने नए कैपेक्स हाथ में लिए हैं या जो भी ऑनगोइंग कैपेक्सेस चल रहे हैं विच आर ऑन द वर्ज ऑफ द क्लोजर. आज अगर आप मेरे को बोलो कि भाई यूनिट 5 का डाइस का प्लान तैयार है मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल तैयार है कैपेक्स क्यों नहीं किया भाई मैंने प्लान चालू नहीं किया. आज आप बोलोगे यूनिट 6 की क्या पोजीशन है, मैं बोलूंगा सर 90-95% कंप्लीशन है। मेरे को ट्रायल चालू करना होता तो मैं इसको कहीं ना कहीं ट्रायल को मार्च में अप्रैल में चालू कर देता, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको नहीं किया, बराबर है, हम लोगों ने रोक लिया। क्योंकि सर क्या है कि एक बार चालू कर दिया फिर मैं बाद में रुक जाऊं, यू नो दिस विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर मी, दैट टू ऑल्सो एट द 3 times प्राइस व्हाट आई हैड प्रोजेक्टेड अर्लियर। और सर मार्केट इतनी जल्दी मैच्योरिटी पे नहीं आता कि जितने तेजी से रॉ मटेरियल के भाव बढ़े हैं उतने तेजी से इमीडिएटली डिमांड में भी उसका इम्पैक्ट आ जाए। जब भाव बहुत बढ़ जाएंगे तो डिमांड एक बार रुकनी है, दबनी है। तो सर लेट द मार्केट बी मैच्योर, लेट द मार्केट बी एक्सेप्टिंग दीज न्यू प्राइजेस विच आर ऑलमोस्ट 3 times ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइजेस ऑफ अवर अर्लियर। तो एक बार सर कभी कभी मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सा रुक जाना, थम जाना, वेट करना थोड़ा सा बेटर है। एंड बींग इट्स यू नो दिस वी आर डेट फ्री, एंटायर कैपेक्स हैज बीन डन बाय अवर इंटरनल अक्रूवल्स, वी डू नॉट हैव एनी सच फाइनेंशियल प्रेशर एंड एनी सच फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, सो वी कैन होल्ड ऑन टू वेट। एंड आई सी दैट देयर इज गोइंग टू बी ए गुड अपॉर्चुनिटी। और जो नंबर्स पुराने थे वो नंबर्स अब रीसेट हो गए हैं, पुराने नंबर्स अब कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। लाइक सल्फर विच हैज गॉन टू 100 rupees ऑलमोस्ट अ केजी एंड अर्लियर विच वॉज अराउंड 30-35 rupees ए केजी, तो अगर हम ये सोचे कि वापस 30-35 rupees का बैरियर आ जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी देयर। इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन एट 100 rupees ऑल्सो, प्रोबेबली वेन द सिचुएशन सेटल्स डाउन इट मे कम डाउन टू अराउंड 70-75, यू नो इन दिस रेंज, बट जो पुराना लेवल है वो नहीं आएगा। अकॉर्डिंगली लेट द यू नो फिनिश प्रोडक्ट मार्केट बी ऑल्सो मैच्योर टू एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ लेवल्स।
मेरा सेकेंड और लास्ट पॉइंट यही रहेगा सर, तो जो हम 1250-1300 का जो अब आउटलुक बना रहे हैं उसमें सर आप अभी के जो सेलिंग प्राइसेस है उसको फैक्टर कर रहे हैं, बट एडिशनल कोई वॉल्यूम का इम्पैक्ट एज ऑफ
नहीं, मैं पुराने वॉल्यूम्स को और पुरानी प्राइसिंग को ही फैक्टरिंग कर रहा हूं।
नहीं समझा सर।
सर सिंपल चीज है कि मतलब मैंने जो वॉल्यूम्स हमारे चल रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग दोज वॉल्यूम 65-70% यूटिलाइजेशन एज वेल एज स्टार्टिंग ऑफ यूनिट 5 एंड यूनिट 6 समवेयर बाय Q1 और मे बी Q2। आई एम नॉट श्योर वेदर वी विल बी एबल टू स्टार्ट इन Q1 और Q2। प्रैक्टिकली मैं ये खरीफ के सीजन को यू नो एक फॉरगो करके बैठा हूं मेरे उसके अंदर। अब लेट्स सी हाउ वी गेट ए विजिबिलिटी, लेट्स सी यू नो बिकॉज इट इज वेरी अनसर्टन सर टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट।
नहीं सर, वो पॉइंट आपका क्लियर हुआ, मैं सिर्फ 1250-1300 का जो नंबर था उसको आप समझा रहे थे, वो पॉइंट नहीं समझ पाया था कि
सर वो पॉइंट ऐसा है कि जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बोला था कि भाई 1500 करोड़ रुपए की सेल हम एक्सपेक्टेड करेंगे, मैं उसी फॉर्मूले के ऊपर चलते हुए अगर खरीफ का सीजन हाथ में नहीं मिला तो कहीं ना कहीं सेकंड सीजन जो है रबी का सीजन वो मिलेगा तो उसके अंदर 250 करोड़ तो कर ही लेंगे, 1000 करोड़ और 250 करोड़।
बाकी अभी जो मार्केट में जो इम्प्रूव प्राइसेस है उसको आप फैक्टर नहीं करें, क्योंकि
उसको मैं फैक्टरिंग नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं फैक्टरिंग अभी नहीं कर रहा हूँ सर।
तो वो एक बफर ही है सर हमारे लिए, अगर प्राइसेस
सर उसको आज फैक्टरिंग करने का मतलब नहीं है ना सर, उसको आज फैक्टरिंग करने का मतलब नहीं है ना
जी सर, क्योंकि किसी को पता नहीं है कहाँ रुकेगा
सर। ऐसा है कि आप इन्वेस्टर हो और मेरी जिम्मेदारी ये है कि यू नो एक जो प्रैक्टिकल और एक जो कंजर्वेटिव कॉल जो मैं समझता हूँ वो मुझे आप तक पहुँचाना चाहिए, उसके बाद मेरा डिसीजन आपका है।
जी साहब, और मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ सर, हरदम ही आप सही हमें निर्देश देते हैं, लेट्स सी हाउ कैसे चीजें प्लान आउट होती है और बेस्ट ऑफ द टाइम्स है।
हाँ हाँ बिल्कुल, जो दाम बढ़े हैं उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो उसको वो अलग है सर, उसको अपन अलग काउंटर हाँ उसके ऊपर आज चर्चा करके कोई अर्थ नहीं है,
कोई लाभ नहीं। ठीक है सर, बाकी अभी डायनेमिक फेवरेबल है, प्राइसेस अपवर्ड मेंटेन। हाँ मैम, यस मैम, जी जी मैम,
प्लीज रीजॉइन द क्यू,
धन्यवाद मैम, थैंक यू जी।
We'll take the next question from the line of Raghav Bhutodia from Lindsay Securities. Please go ahead.
Hello. Sir, am I audible?
Yeah, yeah, sure, Raghav, you're audible. Please go ahead.
So, this Q4 press release that we had, we have said that our chemical volumes are up more than 30%, but our revenues are flat from last year Q4 to this year Q4. So, can you explain that, sir?
Deepak, I'm not hearing the data in front of me. Can you address this question, please?
One second, sir.
Because that's why I'm attending this con call from my factory, not from the office. If I would have been in the office, then all the data would have been in front of us.
Understood, understood.
So Deepak would be able to answer this query. Anyway, any next question you have, Raghav? In case if Deepak doesn't have the data in front of him, we will answer this question to you through our IR.
Okay.
Okay. Okay. So just a sense on margins for the next year, because jaise aap bol rahe the ki, you know, finished product prices have not kept in line with the raw material prices.
Sir, ye season, sir, ye saal mein bhi meri sense 8% ki thi. लेकिन 8% की सेंस जाके रुक गई 7.1% के ऊपर. उसमें अगर आप देखोगे कि इबिटा इज ऑलमोस्ट 100 करोड़, अब लिटिल लेस देन 100 करोड़, एंड पीबीटी इज आल्सो अराउंड 85 करोड़, एंड वो डिफर्ड टैक्स का कोई वो है इसके अंदर, वो डिफर्ड टैक्स प्रोविजन आने के बाद में ये 70 करोड़ के ऊपर आके पैट रुक गया. अदरवाइज सर ये पैट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 75 से लेकर 80 के बीच में होना चाहिए था. तो मेरी जो विजिबिलिटी 8% की थी वो है, बट बिकॉज ऑफ यू नो जो ये आपका जो डिफर टैक्स है और सर्टन कुछ प्रोविजंस है लीज होल्ड लैंड के, दीपक विल बी एबल टू आंसर ऑन दैट सब्जेक्ट बेटर देन मी. बिकॉज ऑफ दैट हम 7% पे आ गए. आई स्टिल हैव दैट सेम एटीट्यूड दैट यू नो मेकिंग 8 to 10% is not a you know something rocket science.
Even in the increase, like matlab apne ko product prices would, we would have to double kind of finished product prices with the kind of raw material, but even then
banega sir utna paisa, koi dikkat wali cheez nahi hai jo filhal mujhe dikhai de raha hai. Ab baki to dekho main bahut lamba read nahi kar sakta because we are just in the beginning of this new financial year, but in my opinion there should not be any major issue into that.
Okay sir.
Thank you. Sir, do you have any further questions, Raghav?
No, that's good.
Thank you. We'll take the next question from the line of Harshal Solanki from Equitree Capital. Please go ahead.
Hello, Puneet ji. Good afternoon.
Very good afternoon, Solanki ji.
Sir, mera question tha, jaise aapne fertilizer pe detailed explanation diya, aap chemical pe bhi bata sakte ho, aap kaise navigate kar rahe ho situation ko?
सर एक सल्फर ऐसी प्रोडक्ट है, बेंजीन ऐसी प्रोडक्ट है जो कि यू नो डेरिवेटिव है क्रूड की. सर उसका इम्पैक्ट सब चीजों पे है, ठीक है सर. और सल्फर जैसे आज हम लोग जो सल्फर लेके सल्फ्यूरिक ओलियम 65 क्लोरो थाइमिन SO3 यू नो ये पूरी सल्फर डेरिवेटिव केमिस्ट्री करते हैं, उन सबका इम्पैक्ट है सर. अब सिंपल चीज है सर, आपको एक ही चीज बोलूंगा कि यू नो इन द फेब्रुअरी वी यूज टू और इन द मार्च फर्स्ट वीक और सेकंड वीक वी यूज टू सेल एच एसिड वन ऑफ अवर प्रोडक्ट एट अराउंड 525 to 530 रुपीज ए केजी. आज की तारीख में सर ये हम लोग 750 रुपए किलो में इजीली बेच पाते हैं. विनाइल सल्फोन वी यूज टू सेल एट 240 रुपए केजी. आज की तारीख में सर हम 350 रुपए किलो में हम आराम से बेच पाते हैं. सो यू कैन यूज योर विजडम एंड गेज द काइंड ऑफ प्राइस रिफ्लेक्शन. इसमें 3 times का फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज सल्फर इज नॉट द ओनली रॉ मटेरियल व्हाट वी यूज हियर, देयर द अदर रॉ मटेरियल ऑल्सो, देयर इज नॉट मच इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ दोज रॉ मटेरियल.
ओके, तो सर एज अ स्ट्रेटजी हम लोग ऐसा सोच रहे कि हम फर्टिलाइजर में जो सल्फर जाता है उसको केमिकल में डाइवर्ट कर दे तो अपने को ज्यादा
फायदा. सर ऐसा नहीं होता सर, ऐसा सर 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 ऐसा नहीं होता अर्चल जी. इट इज नॉट एवरीवेयर अपॉर्चुनिटी, इट इज बिल्डिंग ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस. अभी आपके घर में अगर 3 बच्चे हैं तो 1 बच्चे को दे दोगे, बाकी 2 बच्चों को भूखा रख दोगे? ऐसा नहीं होता सर. देयर इज अ मार्केट शेयर ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट.
ठीक है, गॉट इट सर. सर मेरा दूसरे क्वेश्चन CFO सर के लिए थे. बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज हुआ है, 23 करोड़ पहुंच गया है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हम
जो पुनीत सर ने इसी कॉल पे बोला है, जो हमने 16 टर्म लोन लिया है SBI से 25 करोड़ का, उसकी वजह से हमारा लॉन्ग टर्म बॉन्ड 23.15 करोड़ का जो हम अवेल कर चुके हैं, सेंक्शन हमारा 25 का है जिसमें से 23 हम अवेल कर चुके हैं, जो हमारा 155 करोड़ का टोटल कैपेक्स है इन श्री पुष्कर, जिसमें से 35 करोड़ का कैपेक्स हमारा सोलर का, उसमें हमने 25 करोड़ का टर्म लोन लिया, तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्लासिफाई हुआ है बैलेंस शीट पर।
सर सोलर के ऊपर 25 करोड़ का लोन लिया ना?
हाँ सर, मुझे वो याद नहीं था, मैं समझ गया अभी। और सर लेबर कोड का इंपैक्ट क्या होगा अपने बुक्स में, क्योंकि Q4 में हम देने वाले थे वो इंपैक्ट?
लेबर
सर, लेबर न्यू जो लेबर कोड आया है उसमें मेनली दो मीन्स इफेक्ट आने था। एक तो ये इफेक्ट बोलता है लेबर कोड कि आपके डायरेक्ट अगर कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लॉई है 1-to-1 तो उसका इम्पैक्ट आना था, क्योंकि उनका ग्रेजुएटी फ्रॉम 5 years to 1 year हो गया है। सेकेंड इम्पैक्ट ये था कि आपका टोटल CTC का बेसिक less than 50% है, तो इसका इम्पैक्ट आने वाला था। लेकिन श्री पुष्कर ग्रुप में बेसिक सैलरी ऑलरेडी CTC का 50% है, और जो हमारे श्री पुष्कर ग्रुप में जो भी इम्प्लॉई है वो डायरेक्ट इम्प्लॉई है सब, कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लॉई के बेसिस पे, कोई भी डायरेक्ट ऐसा नहीं 1-to-1 इम्प्लॉई है, सब परमानेंट इम्प्लॉई है। तो परमानेंट इम्प्लॉई पे वो ग्रेजुएटी का जो न्यू लेबर कोड का है वो अप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए ग्रेजुएटी का हमारे कंपनी के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है।
ठीक है, समझ गया सर, दिस वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ पुरुषोत्तम पद्मनाभन फ्रॉम वाइज ओल्ड बर्ड प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज गो अहेड।
हेलो सर, सो अभी आप बता रहे थे कि रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव अबनॉर्मली राइज्ड, बट अभी हमारा मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट होगा, सो फाइनल प्रोडक्ट सेलिंग का मार्जिन कम्पेयर टू लास्ट कपल ऑफ इयर्स?
आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड दीज क्वेश्चन इन माय अर्लियर रिप्लाईज।
मैंने भी सुना सर, बट क्या है कि ये इस क्वार्टर के बारे में आपने बताया, बट मैं आई वांटेड टू नो फॉर नेक्स्ट टू क्वार्टर्स। और
इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रेडिक्ट फॉर नेक्स्ट टू क्वार्टर्स, बट इन माय ओपिनियन मेकिंग अ मार्जिन ऑफ अराउंड 8-10% विल नॉट बी अ ग्रेट फाइट फॉर अस, राइट? दिस इज जस्ट अ विजिबिलिटी आई एम गिविंग एज पर माय विजडम, बट द रेस्ट द यू नो सिनेरियो विल टीच अस बेटर। But in my opinion, around 8 to 10, you know, on a conservative side, making 8% margin should not be a great fight for us.
Okay. And even on the utilization side, sir, we have been constantly utilizing 65-70%. I mean, we can maintain for next couple of quarters until this raw material resolves.
We really hope, sir, to maintain at least whatever we have been doing and performing in the past, to at least maintain that much and try to do and achieve better than what we did in the past.
Okay, sir. That's all I had. Thanks. Yeah.
Thank you. The next question is from the line of Murtaza from Pinpoint X Capital. Please go ahead.
Hi, sir. Good evening. Really appreciate you attending the call from the plant and giving such a honest commentary. सर जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि सर जो हमारा बांग्लादेश में इम्पैक्ट था, तो आफ्टर द इलेक्शन आर नाउ डन, तो अभी कुछ रिकवरी हुआ है या आउटलुक कैसा है वहाँ पे?
सर देखो, इलेक्शन खत्म होने के बाद में देर इज अ स्टेबल गवर्नमेंट इन बांग्लादेश वी बिलीव, बट लेट मी टेल यू एज ऑफ नाउ एंटायर ग्लोब इज यू नो फाइटिंग अगेंस्ट द क्राइसिस ऑफ द एनर्जी, यू गॉट माई पॉइंट? And energy is now the most precious rather than the even the gold also. And sir, iska impact sab jagah hai. You know, it is not like Bangladesh or India, it is the whole globe. So iska impact sab jagah hai sir. And which is resulting into the suppression of demand. And you know, this is which is also resulting into the decrease of the production as well as the consumption also. It is a, you know, the whole circle of the economy. So iska impact to hai sir. Nahi hai, aisa bolna galat hai. और अभी इसके ऊपर पूरी विजिबिलिटी या कोई भी डिटेल कमेंट करना मेरे लिए भी मुश्किल है, बिकॉज वी नीड टू सी यू नो वी आर जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, और वो देखना अभी यू नो समझना और बाकी है सर। और यू नो दिस इज व्हाट आई कैन रिप्लाई एज ऑफ नाउ टू द बेस्ट ऑफ माय विजडम, बट स्टिल वी नीड टू यू नो कंप्लीट दिस रिमेनिंग यू नो अराउंड 11 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, सो लेट्स सी हाउ दिस सेटल डाउन। And in my opinion, we should try not to go down from our existing capacity utilization, not to go down from our existing market share, not to go down from you know, the kind of the profits we are making. And how do we go forward in future? We need to figure it out.
Right, sir. Thank you. And sir, just to clarify, मतलब जो हमारा unit 5 है and unit 6 है, they are मतलब readily मतलब ready to almost get commercialized. It's just that we have as of now put on hold. Otherwise, मतलब हमारे end से हमने भी रोक रखा. Otherwise, it's complete in that sense.
Sir, अगर अपने को चालू करना हो, तो एक महीने के अंदर अंदर अपन trial ले सकते हैं. उस stage के ऊपर अपन बैठे हैं.
Okay, sir. Understood. Thank you very much. All the best for the future. Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Preet Nagar Seth from Wealth Finvisor. Please go ahead.
Sir, आपने बताया tax में कोई changes आया deferred tax की वजह से, so can this is maybe for the CFO. Sir, बता सकते हैं what is the taxation that we should consider in our calculations going ahead? 18% 20% क्या लेना चाहिए?
Deferred tax
हमारा जो डेफर टैक्स में इंपैक्ट आया है वो हमारा जो मध्य भारत में जो यूनिट 3 का प्रोजेक्ट आ रहा है 350 करोड़ का उसका जो हमने लैंड एक्वायर्ड किया है सो अकॉर्डिंग टू इंड एस जो लैंड एक्वायर्ड किया है वो आपका डेफर टैक्स बनेगा क्योंकि राइट ऑफ यूज एसेट्स होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 4 से 4.5 करोड़ का डेफर टैक्स का इम्पैक्ट आया है किसान फॉस्फेट्स एंड मध्य भारत हमारा दोनों न्यू टैक्स रिजीम में है जिसमें हम 22% प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि सरचार्ज एजुकेशन से नेट हम 25% यूज करते हैं श्री पुष्कर में हमारा हाईएस्ट रेट ऑफ स्लेब है जो कि 30% है और मेट है विचेवर हायर है वो हम यूज करते हैं तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो डेफर टैक्स का आया इम्पैक्ट उसके अलावा हमने किसान में जो हमारा सोलार का पावर प्लांट था 4 to 4.5 करोड़ वो भी हमने कैपिटलाइज कर दिया है तो उसका भी इम्पैक्ट आया है बाकी मध्य भारत में भी छोटा 1 करोड़ का कैपिटलाइजेशन है उसका भी इम्पैक्ट आया है
दिवाली मेरा क्वेश्चन था कि अगले सालों के लिए हम क्या टैक्स रेट अज्यूम करें जैसे आप एग्जांपल लेते हैं 1250 करोड़ का टर्नओवर FY 2027 हो तो वहां पे शुड बी अज्यूम 18-20% टैक्सेशन ऑन द ओवरऑल अमाउंट
जो नॉर्मल टैक्सेशन आएगा वो 22-25% आएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी डेफर टैक्स काफी ज्यादा आने वाला है उसका रीजन क्या है कि हम सोलर कैपिटलाइज करेंगे पुष्कर में यूनिट 5 भी कैपिटलाइजेशन में जाएगा यूनिट 6 भी कैपिटलाइजेशन में जाएगा तो डेफर टैक्स नेक्स्ट ईयर में भी आएगा हाँ आप टैक्स रेट 22-25% के बीच में यूज कर सकते हैं
पर दीपक उसके अंदर पर दीपक उसमें पुष्कर में तो अपने पास में कैरी फॉरवर्ड मेट भी काफी पड़ा है तो पुष्कर तो 18% में आएगी
हाँ तो लेकिन सर वो पुष्कर अगर मेरा मेट यूटिलाइज हो जाएगा तो पुष्कर फिर हम न्यू डीजी में जा सकते हैं तो वो 25% में ही जाएगी
ठीक है आप सर मोटा मोटी 22-23 तक का कैलकुलेट करके चलो
ऑन एन एवरेज 22 से 25 के बीच में आएगा
राइट सर
ओनली टैक्सेशन डेफर टैक्स काफी बढ़ेगा अगले साल
ठीक है सर ओके अंडरस्टूड थैंक यू सर
थैंक यू The next question is from the line of Varun Sharma from Korpal Investments. Please go ahead.
Hello. Congratulations for the good set of numbers, sir, for the year.
Thank you, Varun.
Sir, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें कोई ये अमोनिया आता कहाँ से है कि इसकी इतनी शॉर्टेज हो जाएगी जैसे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कि एक केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज कीजिए आता कहाँ से है
सर अमोनिया नेचुरल गैस का प्रोडक्ट है
अच्छा जी
और रिफाइनरियों से जहाँ से क्रूड ऑयल निकलता है वहाँ से नेचुरल गैस भी निकलती है
ठीक
वहाँ से आता है सर
ठीक है सर सर Q4 में हमने कोई प्लांट शटडाउन लिया था मेंटेनेंस के लिए
Q4 में
सल्फ्यूरिक
हाँ यूनिट 1 का सल्फ्यूरिक का प्लांट था शटडाउन में
अच्छा जी और सर ये जो आप कह रहे थे जैसे कि इन्वेंट्री गेन होगा इस क्वार्टर में 13 करोड़ का प्रॉफिट है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 करोड़ के आसपास Q1 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं
सर उसके ऊपर देखो आप मेरे से एग्जैक्ट नंबर तो मत मांगो बिकॉज दैट विल नॉट बी करेक्ट ऑन माय पार्ट एस्टीमेट सर मेरे ख्याल से देखो 8-8.5% बनना चाहिए फ्लैट इतना मैं आपको बोल सकता हूँ अब उतना तो सर आप भी इंटेलिजेंट हो कि भाई 200-250 करोड़ से सेल नीचे कंपनी की नहीं गई कभी भी एवरेज में आप भी निकालोगे तो 976 करोड़, जिसमें से कि लास्ट दो हफ्तों की तो सेल हमने करी नहीं, तो 1000 करोड़ रुपया बनना साल का, यू नो वी हैव अचीव्ड दैट मच, तो अकॉर्डिंगली 250 करोड़ की भी अगर आप सेल पकड़ते हो तो बाकी आप कैलकुलेट करो सर।
सर मतलब कि 250 करोड़ से हम सेल कर लेंगे क्वार्टर वन में,
आना चाहिए सर, उम्मीद है, बाकी तो देखो डिफिकल्ट है, अभी वी इन द जस्ट मिडल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर।
और सर जैसे ही क्रूड ऑयल नीचे आ जाएगा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अमोनिया की शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी?
सर क्रूड ऑयल कब नीचे आ जाएगा, आपको लगता है नीचे आ जाएगा क्रूड ऑयल?
वो सर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब नीचे आ जाएगा।
फिर सर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, फिर सर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? सर
थैंक यू सर,
आप ही जब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो मैं कहां से प्रेडिक्ट कर लूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल सर, सही है सर। Thank you, sir. Best of luck for the whole year, sir.
Thank you, sir.
Thank you. Ladies and gentlemen, we'll take that as the last question for today. I now hand the conference over back to Mr. Pankaj Manjani for closing comments. Thank you and over to you, sir.
Thank you, everyone, for joining for NFY26 earnings call. If you have any further questions, please feel free to connect with our investor relations advisor, Churchgate Partners, and we will be happy to address your queries. Thank you.
Thank you very much.
Thank you. Thank you, sir. Thank you, members of the management. On behalf of Shri Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited, that concludes this conference. We thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.